पृष्ठ संख्या 16, दो विद्यापति, सन 1360 से 1462 ईस्वी। कविवर विद्यापति हिंदी के उन कवियों में शुमार हैं जिनकी कविता उनकी कीर्ति का अचल दृष्टांत है। उनकी गणना विश्व कवियों में की जाती है। विद्यापति में कवित्व की वह गहराई थी जिसे अवगाहित कर कविता स्वयं ही धन्य हो गई। ऐसे अमर कवि विद्यापति के जन्म और मृत्यु के संदर्भ में भारतवर्ष के बड़े कवियों की भांति ही विद्वानों में मतभेद देखा जाता है। अंतः और बहिर्साक्ष्य की आनुषंगिक पूर्ण प्रामाणिकता न होने के कारण उनके जन्म और मृत्यु संबंधी शोध तिथियां प्रायः अनुमानित हैं। डॉक्टर उमेश मिश्र ने विद्वतापूर्ण गवेषणा के उपरांत इनका जन्म काल 1360 ईस्वी निर्धारित किया है। शोध विवरणों से ज्ञात होता है कि विद्यापति का जन्म बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के मधुबनी सब डिवीजन में बेनीपट्टी अंतर्गत बिसफी नामक गांव में एक मैथिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। डॉक्टर शिवप्रसाद सिंह ने उल्लेख किया है कि 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का वह काल मिथिला के लिए विनिपात और दुख का काल था। मिथिला नरेश कड़ेश्वर की असलान नामक सुल्तान द्वारा की गई छल पूर्वक हत्या के बाद मिथिला अकाल, अराजकता और दरिद्रता का शिकार हो गई। कीर्तिलता में विद्यापति ने जिसका बड़ा ही कारुणिक चित्रण किया है। विद्यापति के गुरु का नाम श्री हरि मिश्र बताया जाता है। इनकी माता का नाम हांसिनी देवी और पिता का नाम गणपति ठाकुर था। चंदन या चंपति देवी से विवाह उपरांत विद्यापति को 3 पुत्रों और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई थी। विद्यापति का बचपन अपने पिता के साथ राजा गणेश्वर के दरबार में आते जाते बीता। राजा की हत्या के बाद के दोनों शासकों राजा कीर्ति सिंह और राजा शिव सिंह ने विद्यापति को यथोचित सम्मान दिया। विद्यापति ने भी दोनों राजाओं के दरबार की शान को बढ़ाया। इनकी काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर जहाँ राजा शिव सिंह ने इन्हें बिस्फी गांव दान में देकर इन्हें अभिनय जयदेव की उपाधि से विभूषित किया, वहीं दिल्ली के तत्कालीन शासक नशरत शाह ब्रैकेट में नसीरुद्दीन महमूद ने भी इन्हें सम्मानित करते हुए कवि राजशेखर की उपाधि प्रदान की। विद्यापति का वंश सदैव से ही विद्या और वैभव का स्वामी रहा। तिरहुत का राजदरबार भी जिसके सामने सम्मान सिर नवाता था। ईस्वी सन 1402 के आसपास जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह की सहायता से राजा पृष्ठ संख्या 17 कीर्ति सिंह ने तिरहुत का उद्धार किया। कीर्तिलता में जिसका विद्यापति ने विशद वर्णन किया है, राजा कीर्ति सिंह के गोलोकवास के पश्चात तिरहुत में जब शिव सिंह का राज्य अभिषेक हुआ तब दरबारी कवि विद्यापति का सम्मान अपने चरम को प्राप्त था। राजा स्वयं इन्हें सखा तुल्य सम्मान देता था। शिव सिंह की अनेक रानियों में पटरानी लक्ष्मा देवी का बुद्धि और सौंदर्य में कोई जवाब नहीं था। कहा जाता है कि समवयस्क राजा और रानी के समक्ष अंतःपुर में विद्यापति के गीतों का सस्वर पाठ होता था। इस प्रकार तिरहुत के दरबार में कवि विद्यापति का शेष जीवन ही उल्लासपूर्ण वैभव और सम्मान के साथ व्यतीत हुआ। कहा जाता है कि जब राजा शिव सिंह ने दिल्ली सुल्तान को कर देना बंद कर दिया तो मुसलमानी फौजों ने मिथिला पर हमला कर दिया। राजा को कैद कर दिल्ली ले जाया गया, संभवतः वहीं उनकी मृत्यु भी हुई। ऐसे में प्रिय राजा के वियोग ने कवि के हृदय के उल्लासपूर्ण तारों को तोड़ दिया। मांसल प्रणय और सौंदर्य की अनेकानेक काम मुद्राएं तथा मादक प्रेम का वैभवपूर्ण संसार चूर चूर होकर बिखर गया। पीछे विद्यापति के गीतों में सांसारिक विरक्ति का जो भाव आया वह जीवन के ही उपजात का परिणाम था। अनुमान किया जाता है कि 1462 ईस्वी के आसपास कवि विद्यापति ने इस लौकिक संसार को तिलांजलि देकर प्रेम की अलौकिक शाश्वत युगल मूर्ति राधा और कृष्ण के चरणों में सदा के लिए अपने को विलीन कर दिया। काव्य कृतियाँ संस्कृत अपभ्रंश ब्रैकेट में औहट तथा मैथिली भाषा हिंदी को मिलाकर विद्यापति ने अनेक ग्रंथों की रचना की। अलग अलग भाषाओं में लिखे गए उनके ग्रंथ इस प्रकार हैं। का संस्कृत ग्रंथ विद्यापति की शास्त्रीय तथा स्तुति परक रचनाएं संस्कृत में हैं। इन स्तुति ग्रंथों में विद्यापति ने शिव, गंगा, कृष्ण, राधा, दुर्गा आदि की स्तुति की है। विद्यापति परम शैव भक्त थे। उनके संस्कृत ग्रंथों में कुल 13 रचनाओं का नाम उल्लेख मिलता है, यथा 1 भूपरिक्रमा, 2 गोरक्ष विजय, 3 पुरुष परीक्षा, 4 लिखनावली, 5 शैव सर्वस्व सार, 6 शैव सर्वस्व सार प्रमाणभूत पुराण संग्रह, 7 गंगा वाक्यावली, 8 विभाग सार, 9 दान वाक्यावली, 10 दुर्गा भक्ति तरंगिणी, 11 गया पत्तलक, 12 वर्षकृत्य तथा 13 मणिमंजरी। खा अपभ्रंश अवहट्ट ग्रंथ। विद्यापति के अपभ्रंश मिश्रित अवहट्ट के ग्रंथों में 1 कीर्तिलता और 2 कीर्तिपताका प्रमुख हैं। पृष्ठ संख्या 18। गा मैथिली भाषा में ग्रंथ। विद्यापतिकृत मैथिली भाषा के ग्रंथों में केवल उनकी पदावली है जो उनकी अक्षय कीर्ति का प्रकाश स्तंभ है। वास्तव में विद्यापति की पदावली ना तो संस्कृत ग्रंथों के कारण है ना अपभ्रंश या अवहट्ट के। यदि पदावली को हटा दिया जाए तो कवि विद्यापति के काव्यत्व की भव्यता ही समाप्त हो जाती है। कीर्तिलता में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह के यश और प्रताप का वर्णन है। यह ग्रंथ 4 पल्लवों में विभक्त है तो कीर्ति पताका में उनके उत्तराधिकारी राजा शिव सिंह के युद्ध का सविस्तार वर्णन है। विद्यापतिकृत कीर्तिलता और कीर्ति पताका अपभ्रंश मिश्रित अवहट्ट भाषा की रचनाएं हैं जिनमें गद्य का भी प्रयोग हुआ है। पदावली की भाषा मैथिली है जिसमें कवि विद्यापति के कवित्व का चरम निदर्शन हुआ है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के अनुसार विद्यापति ने 500 से अधिक पद लिखे हैं। ये पद ही उनकी अक्षय कीर्ति के आधार हैं। राजदरबार के दमघोटू वातावरण में रहते हुए भी उन्होंने इन्हीं पदों के सहारे अपने व्यक्तित्व को सुरक्षित रखा। इन पदों में कवि की आत्मा के स्वर हैं, उनके हृदय के कंपन हैं। इन पदों में कवि ने राजाओं के विलास की ही नहीं जनता के सहज हृदय की भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। विद्यापति और उनका काव्य। विद्यापति की अक्षय कीर्ति का आधार उनकी पदावली है। पदावली विद्यापति की अत्यंत सरस परक गीति रचना है। इसमें कृष्ण और राधा को नायक नायिका बनाकर कवि ने श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष की बड़ी ही मार्मिक अभिव्यंजना की है। इसमें सद्यस्नाताओं के वयह संधि नख शिख अभिसारिकाओं के औत्सुक्यपूर्ण मिलन, नायक द्वारा उनके मान मनोवल, सुघर तारुण्य आदि का भी अद्भुत और अनुपम वर्णन विद्यापति ने किया है। वयह संधि में नायिकाओं के पैरों की चंचलता उसकी आँखों में आ जाती है तथा पैर लज्जा और मर्यादा में बंध जाते हैं। नारी सौंदर्य के सूक्ष्मति सूक्ष्म मनोविज्ञान के साथ चित्रण में जितनी सफलता विद्यापति को मिली है उतनी किसी कवि को नहीं। विद्यापति की पदावली में जहाँ संभोग और मिलन की अनेक मुद्राएं हैं, वहीं पावश की गजलाकार रातों में बिरहड़ियों के विरह का हृदय विदारक चित्रण भी। इसमें जहाँ घोर श्रृंगार के चित्रण हैं, वहीं दैन्य भक्ति और विनय के भी। यही कारण है कि विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारी कवि। इस संदर्भ में विद्वानों में मतभेद देखा जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डॉक्टर ग्रियर्सन एवं डॉक्टर जनार्दन मिश्र आदि जहाँ विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं, वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर उमेश मिश्र, पंडित हरप्रसाद शास्त्री, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री तथा पृष्ठ संख्या 19 राष्ट्र कवि दिनकर आज विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा कि इन्वर्टेड कॉमा विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे, उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। इन्वर्टेड कॉमा बंद। आगे उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि इन्वर्टेड कॉमा आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। इन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सुर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वह क्या करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा बंद। सौंदर्य के ऐहिक चित्रणों की प्रधानता के कारण डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी प्रश्न करते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा विद्यापति के इस बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, इस वह संधि में ईश्वर की संधि कहाँ, सद्या स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ और अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। पर विद्यापति के यहाँ अभिसार में भी भक्ति का सार छिपा हुआ है। सद्या स्नाता और वह संधि की व्यंजना में उद्दात प्रेम और शुद्ध विचारों का उदय होता है, पंकिल भावों का नहीं। विद्यापति का नख शिख वर्णन भी इतना सूक्ष्म और हृदयग्राही है कि मलिनता उसे छू भी नहीं पाती। इस प्रकार विद्यापति का प्रेम और सौंदर्य वर्णन ऐहिक होते हुए भी अलौकिक आभा से उद्भासित है। इस दृष्टि से विद्यापति प्रेम, यौवन और सौंदर्य के कवि हैं। विद्यापति अपरूप के कवि हैं। जिस रूप का वह चित्रण करते हैं उसकी छाया मात्र लेकर उसे जैसा पार्थिव अपार्थिव चाहते हैं वैसा सजीव रूप दे देते हैं। सौंदर्य उनका दर्शन है और सौंदर्य उनकी जीवन दृष्टि है। इसीलिए वह अपरूप और अपरूप अर्थात सौंदर्य की अपूर्वता का वर्णन करने वाले कवि हैं। मूलतः वह एक श्रृंगारी कवि हैं जिनके यहाँ श्रृंगार का आलंबन भक्ति है। पदावली में श्रृंगार और भक्ति दोनों के ही पद हैं। जैसे अपने को परम शैव सिद्ध करते हुए विद्यापति अपने इष्ट भगवान शिव से कातर होकर कहते हैं, कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ, दुख ही जन्म भेल दुख ही गमाओल, सुख सपनहु नहि भेल हे भोलानाथ, अक्षत चानन चाओर गंगा जल, बिलपात तोहि देव हे भोलानाथ। भाषा शैली, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण आदि सभी दृष्टियों से विद्यापति एक श्रेष्ठ कवि सिद्ध होते हैं। उनकी भाषा में लोक शब्दों की मिठास, पृष्ठ संख्या 20, छंदों में लोक गीतों की सिलय और भावों में लोक हृदय की सरसता है। सूरदास के होते हुए आगे चलकर उनका प्रभाव रीतिकालीन कवियों पर भी देखा जाता है। आचार्य शुक्ल ने सूर की प्रशस्ति लिखते हुए विद्यापति के संदर्भ में लिखा कि इन्वर्टेड कॉमा जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही लोक भाषा की सरसता में परिणत होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट हुई और आगे चलकर ब्रज के करिल कुंजों में फैले मुरझाए मनों को सींचने लगी। इन्वर्टेड कॉमा बंद। लोक भाषा की इसी मिठास के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल ब्रैकेट में मिथिला की कोयल कहलाए। कीर्तिलता और कीर्ति पताका में जहाँ अंगिरस वीर है, वहीं पदावली में श्रृंगार, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विप्सा, मानवीकरण आदि विद्यापति के प्रिय अलंकार हैं। गेयता उनकी कविता का सबसे बड़ा गुण है। विद्यापति संपूर्णता के कवि हैं। उनमें जहाँ यौवन का उल्लास है वहीं वृद्धावस्था की निराशा भी। इसीलिए वह कृष्ण से कहते हैं, माधव हम परिणाम निराशा, तुहू जगतारन दीन दयामय, अतय तुहार विषबासा। कवि विद्यापति ने अपनी कवि प्रतिभा और उर्वर कल्पना शक्ति से जड़ जंगम मनुष्य, पशु पक्षी, वन पर्वत, समुद्र, नदियाँ, चातक, चंद्रमा, भ्रमर, मेघ, बिजली, कमल, काजल आदि सभी को समेट लिया है। कुछ भी उनकी आँखों से ओझल नहीं हो सका है। उनकी वाणी में वह मधुरता, सरसता और लोकरसता है जो उन्हें एक अमर कवि सिद्ध करती है। यही कारण है कि मिथिला की अमराइयों से निकलकर उनके गीत बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम तथा समस्त उत्तरी भारत में उनकी कीर्ति बनकर छा गए।